तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला।
ओम शांति। तो क्या सुनाए आपको, जो यहां पहली बार आए हाथ उठाए, जो घर गृहस्थ में रहते हैं परिवार लौकिक में हाथ उठाए, जो कुमार है हाथ उठाए, कुमारियां हाथ उठाए, जो सेंटर में रहते हैं बहने हाथ उठाए। तो सब प्रकार के आत्माएं जो भी यहां है, अनुभव भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव बाबा के साथ और संगठन के साथ और सब प्रकार की आत्मा के साथ रहते हुए कैसे हम सफलता को पाएं। कोई भी कारण हम नहीं दे सकते, कोई भी कारण कि ये विघ्न है, ये बंधन है, ये समस्या है, कोई भी नहीं दे सकते है अपनी संपूर्ण अवस्था पाने के लिए, कोई भी नहीं दे सकते, क्योंकि सब प्रकार के संबंध लौकिक में हमने अनुभव किए और सब प्रकार के संबंध और बंधन से भी पार हो गए। कभी भी कोई नहीं कह सकते, चाहे शरीर का रोग का बंधन होए, चाहे लौकिक में कोई बंधन होए, चाहे सेवा में बंधन होए, चाहे संबंध का बंधन होए, कोई भी नहीं कह सकते। प्रैक्टिकल प्रूफ हम आपके सामने वो बता सकते हैं। लौकिक पढ़ाई, लौकिक जीवन, अलौकिक पढ़ाई, अलौकिक जीवन, दोनों में कैसे हम नंबर वन आए, वो सिर्फ हमारे मन बुद्धि के ऊपर है, किसके भी ऊपर नहीं। तो ये अनुभव हर कार्य में सफलता पाने का आधार क्या है, क्या आधार है? हमारी दृढ़ता, हिम्मत, विश्वास, निश्चय बाबा में। तो बाबा ने तो हमको परसों पास कर दिया अलौकिक पढ़ाई में, आपने सब देखा सुना, परंतु पास नहीं होना है, आगे बढ़ना है। लौकिक पढ़ाई में भी मैं ये बताऊं, जो अभी लौकिक में रहते हैं, तो जब मैं 8-9 साल का था तभी मैंने सब वेद शास्त्र रामायण महाभारत पढ़े, परमात्मा का कुछ परिचय नहीं, कहां भी नहीं। कई गुरुओं साधुओं से पूछा, इतने पुस्तक शास्त्र पढ़ते भी हमको कहां परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं मिलता, तो वो नहीं बता सके। ऐसा करके मैंने वेद शास्त्र भी जितना पढ़ा था उसको बाजू रखा और मेरा बाबा की खोज में बहुत समय चलता था। कई बार मैं पूछता था, बाबा कभी मैं तेरे साथ संबंध जोड़ूंगा, लेकिन जो भी गुरु महात्मा से पूछे वो बोले कि आपको संबंध जोड़ना है तो आपको जाके हिमालय में रहना है, हिमालय में रह के क्या करेंगे, वहां तपस्या करना है, तपस्या क्या करेंगे, फिर आपको साक्षात्कार होएगा, क्या होएगा, आप लाइट देखेंगे, रोशनी मिलेगी, तो वो तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं, बस वो आनंद हो गया। मैंने कहा ये क्या प्राप्ति है, कुछ प्राप्ति नहीं है, मुझे कुछ प्राप्ति नहीं देगी। तो मैंने लौकिक पढ़ाई भी छोड़ दी, कुछ नहीं पढ़ा, पूरे स्कूल में जाता था, नियम प्रमाण पढ़ता कुछ नहीं था, लास्ट नंबर आता था क्लास में, पूरा लास्ट नंबर, पढ़ता ही नहीं था कुछ, न पढ़ाई में ध्यान लौकिक में। क्यों बताता हूं कि लौकिक अलौकिक में क्या संबंध होता है, बाबा भी संबंध बताते हैं। अचानक जब भी मैं मैट्रिकुलेशन में आया, मैट्रिक का एग्जाम था, तो मुझे अंदर में ये जागृति आई, न मैं ये दुनिया का न वे दुनिया का, न भगवान का मुझे परिचय नहीं को दे रहा है, और ये दुनिया में भी रहना है तो कुछ तो करना है ना। क्लास में लास्ट नंबर आता था, फिर हमारा होता है मैट्रिकुलेशन में, जो आपको पता होगा, होता है प्रीलिम एग्जाम, फिर होता है फाइनल एग्जाम। तो प्रीलिम एग्जाम और फाइनल एग्जाम में एक मास होता है गैप। तो अचानक मुझे ये अंदरूनी जागृति, किसने बोला नहीं, अंदरूनी जागृति आई, आपको जिंदगी में कुछ तो करना है ना, आपका आकर लक्ष्य क्या है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना, क्या भी करना है कुछ तो करना है ना। तो मैंने कहा अभी मैं ये पढ़ाई नहीं पढ़ूंगा लौकिक, तो मैट्रिकुलेशन में फेल हो जाऊंगा। तो एक मास पूरा मुझे ए प्लस बी भी पता नहीं क्या होता था, 7+7 पता नहीं क्या होता था, कुछ पढ़ाई नहीं की। एक मास मैं छत के ऊपर जहां रहता था, सुबह को सब किताब लेके, नहीं कोई ट्यूटर रखा, नहीं कोई क्लास के दोस्त से पूछा कि क्वेश्चन पढ़ाई के बारे में कैसा है और कैसा समझ में नहीं आता है, नहीं, पुस्तक लेके मैं ऊपर चला जाता था। 3 साल की जो पढ़ाई थी, संबंध होता है उसका मैट्रिकुलेशन के साथ, वो ऊपर पढ़ के सुबह से शाम तक, खाली दोपहर को नीचे आता था अपने घर में भोजन के लिए, सुबह से शाम तक उसका अर्थ और तंत्र समझा क्या होता है, वो पढ़ाई की, एक मास के लिए बस। तो फाइनल एग्जाम हुआ मैट्रिकुलेशन का, बोर्ड एग्जाम होता है आपको पता होएगा, तो उसमें तो सब सब्जेक्ट में पास होना होता है, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो फेल हो जाएंगे। तो फाइनल एग्जाम हुआ, मुझे भी पता नहीं होता कि मैं पास होगा नहीं पास होगा। जब ही गया स्कूल में, सर्टिफिकेट लेने, एक मास की पढ़ाई में जो मैं कुछ भी नहीं जानता था, नहीं किसकी मैंने हेल्प लिया, नहीं ट्यूशन ली, देखा मेरी मार्क फर्स्ट क्लास में थी। फिर जैसा ही मैं मार्क्स निकले बाहर निकला, तो हमारा स्कूल टीचर टेबल पे बैठा था और पांच जो स्टूडेंट होते थे वो उसके सामने, जो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव आते थे, वो उसके सामने बैठे थे। तो मैं ऐसा ही पास कर रहा था, क्योंकि हमारा क्लास टीचर को पता है ये तो लास्ट नंबर आने वाला है, इसके क्या मार्क्स होगी। तो उसने पांच जो नंबर वाले टीचर थे, उनके स्टूडेंट थे, उनके मार्क्स देखी। तो ऐसा ही मैंने सुना है, पास कर रहा था, तो टीचर बोला ये फर्स्ट नंबर आया है। तो मैंने तो बाय चांस पूछा उसके कितने मार्क्स है, तो बोला उसकी इतनी मार्क्स आई है, फर्स्ट नंबर आया क्लास में। तो मैंने बोला मेरे मार्क्स से ज्यादा है, और उसको शॉक आ गया, बोला तेरी मार्क्स से ज्यादा हो सकती है, तुम तो लास्ट नंबर वाला है। तो मार्क्स देखी, तुम तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया, फिर फर्स्ट क्लास आया, लेकिन फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया। तो देखो, वो तो विश्वास नहीं करे, जब देखा, उसको दिखाया मेरी मार्क्स कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया, उसके बाद उसको विश्वास आया। तो अलौकिक पढ़ाई भी ऐसी है, ऐसे कोई भी कारण नहीं है कि आप पीछे आए या आगे आए, आप कभी भी आ सकते हो बाबा के ज्ञान में। अपने तीव्र पुरुषार्थ से आप नंबर वन ले सकते हो। कोई भी नहीं कह सकता है मैं पीछे ज्ञान में आया। मैं जब ज्ञान में आया तब यज्ञ की स्थापना को 42 ईयर्स 42 साल हो गया था। ऐसा नहीं कि मैं इतना पीछे आया हूं, मुझे इतना समय नहीं है नंबर वन आने में, नहीं, संकल्प नहीं आया। तो पढ़ाई कौन सी भी होए, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, आप जो सब सामने बैठे हैं कभी नहीं कह सकते हैं एक तो ये बंधन है, दूसरा हमें समय कम मिला है, नहीं, आ सकते हैं। मेरे को एक बार ये संकल्प आया, पहली बार जब मैं मधुबन में आया बाबा को मिलने के लिए, अवेक बाबा दादा को मिलने के लिए पांडव भवन में, तो जैसा ज्ञान लिया तो रूहानी नशे में था, बहुत बहुत रूहानी नशा बाबा ने चढ़ाया, मुझे ये भी कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। तो बाबा को जब पहली बार मिला पांडव भवन में, ओम शांति भवन भी तैयार नहीं हुआ था, तो बाबा ने मेरे से सिर्फ दो लाइन बोली, मैं लौकिक कारोबार में घर गृहस्थ में बिजी था, सेवा भी नहीं की थी कुछ, नहीं समर्पण भी हुआ था, घर में रहता था। तो बाबा ने पावरफुल दृष्टि देके बोला मेरे को, आप तो नंबर वन आत्मा है, आपसे क्या बात करें। तो बाबा तो त्रिकालदर्शी है, मैंने कहा मैं न कुछ सेवा किया, मैं घर गृहस्थ में रहता हूं, मैं तमो प्रधान आत्मा, और बाबा बोलता है नंबर वन आत्मा, कैसे हो सकता है, मुझे कुछ संकल्प चलने लगे। तो हर साल लंदन से मधुबन आते थे, मधुबन में एक हफ्ता रहते थे, क्योंकि लोग के कारोबार में व्यस्त था, लंदन में इतना समय नहीं रह सकता था। तो एक मीटिंग बाबा के साथ करके कुछ दिन रहकर मैं चला जाता था लंदन में। तो दूसरे या तीसरे मीटिंग में नहीं, कुछ मैंने सेवा नहीं, समर्पण मैंने कुछ नहीं किया, वो टाइम की बात है। तो बाबा दृष्टि दिया, प्रश्न मुलाकात बाबा के साथ हमेशा होती थी वो दिनों में, दृष्टि देकर बोलता है, बच्चे आप सचमुच में राजा बनने वाले हो। तो मैंने कहा मैं कैसे राजा बनूंगा सचमुच, नहीं कुछ सेवा की है, नहीं समर्पण, न कि मेरी बुद्धि में इतना योग और ज्ञान और धारणा और सेवा हुई है। और बाबा बोलते हैं सच में तुम राजा बनने वाले हो। संकल्प चला, लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी है, वो सब जानते हैं, हर एक जन्म पत्री जानते हैं। नशा बहुत, रूहानी नशा। उसके बाद बाबा ने बहुत वरदान दिए, प्रथम बुला के बहुत बड़ी लिस्ट वरदानों की दी। तो कहने का भाव ये है कि हर एक को चांस इक्वल है आगे बढ़ने का, इक्वल चांस है, चाहे कभी भी ज्ञान में आए। लंदन में जैसे मैं पहले दिन कोर्स शुरू करने गया, और टाइम दादी जांग की थी, क्यों बताता हूं, कैसे भी आत्मा होए, कैसे भी नियम मर्यादा के श्रीमद के अलावा रहने वाली हो, कैसे परिवर्तन हो सकती है, क्यों बताता हूं। तो दादी ने बोला, दादी जानकी बोला, आप सुबह को क्लास में आओ मूली सुनने के लिए। बोला कितने बजे, बोला 6 से 6:30 योग होता है, 6:30 मुरली। तो मैंने दादी को बोला नहीं, लेकिन मन में बोला। वो दिन हमारी दिनचर्या ऐसी होती थी कि हम रात को 12-1 के पहले नहीं सोते थे, 8 बजे सुबह को उठते थे, उसके पहले नहीं, 8 बजे उठ के 8:30 तैयार होके हम जाते थे अपने कारोबार धंधे में, ऐसी दिनचर्या। तो मैंने कहा 6 बजे आऊं, अमृतवला की बात छोड़ो, 5 बजे उठना पड़े, हमारा घर लोके का सेंटर 15-20 मिनट की ड्राइव थी, तो नहीं हो सकता है। मन को बोला, दिनचर्या कभी भी मैं 8 के पहले लंदन में नहीं उठा, 50 साल हो गया लंदन, 50 साल के अधिक हो गया। तो आप भी जो बैठे हैं ना, कोई भी आपको कैसी भी प्रकार की आदत होए, कभी नहीं कह सकते कि हमको ये आदत है, हम नहीं कर सकते, ये खाली संकल्प चला। मेरा कोर्स समाप्त हुआ, मुझे बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि मैंने बहुत पुस्तक पढ़े थे, चाहे शास्त्रों के, चाहे विज्ञान के, चाहे धार्मिक इतिहास, आर्थिक हजारों पुस्तक पढ़े थे ज्ञान के पहले, तो मुझे ये तो ज्ञान बाबा का नवा बिल्कुल नवा, तो कोई संबंध जोड़ने के लिए मुझे बहुत प्रश्न थे। तो टीचर जो हमको कोर्स कर रही थी बोला, देखो मैं तो जितना जानती हूं मैंने आपको बताया, आप मैं तो कुछ नहीं जानती हूं, आप सब वो क्यों नहीं आते हैं मुरली सुनने, बाबा आपको और हर एक सवाल का जवाब देगा। मैंने कहा मैं कभी 8 बजे नहीं उठ सकता हूं, कभी नहीं, कभी उठा ही नहीं हूं। बोला ठीक है आपकी मर्जी। मैं घर गया, संकल्प नहीं था कि मैं इतना 5 बजे उठ सकूंगा, सो गया 12-1 बजे। अलार्म रखा 8 बजे उठने का, अचानक सुबह को 5 बजे मेरी आंख खुली, आंख खुल गई। साक्षात्कार हुआ ऐसा कि लाइट का, शिव बाबा का साक्षात्कार मेरे रूम में साक्षात्कार, ऐसे बाद में बहुत हुए, पहले साक्षात्कार हुआ और बहुत हल्का ऐसा फरिश्ता होता है ना उड़ रहा था। वो साक्षात्कार हुआ, फिर मैंने हमारे अलार्म क्लॉक में देखा 5:05, मैंने कहा इतना जल्दी क्यों उठाऊं। फिर सोने का कोशिश किया, नहीं 10-15 हमने सोने की कोशिश किया, नहीं सो पाया। अचानक क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, ऐसा क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उठा जैसे कि शिव बाबा मेरे में प्रवेश करके सब कुछ कर रहा है। मैं उठा, नहाया, तैयार हुआ, थोड़ा नाश्ता किया 5:15, घर के बाहर निकला, बर्फ पड़ रही है, हमारी कार पूरी बर्फ से ढकी हुई, मुझे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, बिल्कुल मेरे सुध बुध कुछ नहीं। मैं कार में बैठा, मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा हूं, और कोई ड्राइव कर, शक्ति ड्राइव कर रही है। ऐसा करके मैं 6 बजे 6:15 सेंटर के बाहर पहुंच गया। मुरली क्लास में मुरली चल रही थी, मुरली सुन रहा हूं लेकिन कुछ भी नहीं सुन रहा हूं। बाबा के रूहानी नशे में बैठा हूं, बिल्कुल बिल्कुल बाबा के नशे में बैठा हूं। कुछ आजू बाजू क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। मुरली चल रही है क्या, कुछ पता नहीं। कल बाबा से रो रान चल रही थी, बाबा बोला बच्चा आपने बोला आप 8 बजे नहीं उठ सकते, आज कैसे उठा। मैंने कहा बाबा मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आप, मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा है, सब कुछ आपने किया। तो बाबा ने वरदान दिया रोज मैं उठाऊंगा आपको। वो दिन, आज का दिन, 38 ईयर्स हो गया, कभी भी मैंने मुरली मिस नहीं किया। चाहे पूरी रात को जागना पड़ता है सेवा के संबंध में या कोई भी संबंध में, पूरी रात जागना पड़ता है, जागा भी हूं। एक टाइम हमको, हमारी मीटिंग थी 4 बजे शाम से सुबह को 4 बजे तक 12 घंटा मीटिंग चली, उसमें न चाय न पानी न भोजन कुछ नहीं, क्योंकि हम बड़ा, बहुत बड़ा रिट्रीट प्लेस जो पैलेस ऑक्सफोर्ड में है, क्वीन विक्टोरिया क्वीन एडवर्ड वहां रहते थे, आपने सुना होगा, 70 एकड़ का बगीचा, नदी थेम्स बह रही है, 100 कमरे, पैलेस वो हम ले रहे थे, वो ले रहे थे तो वो दिन हमको कॉन्ट्रैक्ट सही करना था। अगर नहीं करेंगे तो वो रिट्रीट प्लेस हाथ से चला जाएगा। वही रात को करना था। 12 घंटा मीटिंग चली मकान के मालिक के साथ। एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्चे यज्ञ में इकोनॉमी में आपका बहुत बड़ा पार्ट है। बाबा का वरदान प्रैक्टिकल में मैं यूज करता हूं। तो जिससे हमने वो मकान ले रहे थे निमित बन के, बाबा ने निमित रखा मेरे को, उसने लिया था, ये 20-25 साल पहले की बात है, 60 करोड़ रुपए में, और हम उसे सौदा किया कितने में, उसने 5 साल पहले मकान लिया था और हम सौदा किया कितने में। बताइए आप, धंधे वाले कोई है, मकान किसको है अपना, कितने में लिया होगा? बताइए, उसने 60 करोड़ में लिया था 5 साल पहले, 5 साल बाद हम उसे खरीद कर रहे थे, इतना सुंदर पैलेस कितने में, हाँ कितने में होएगा, हाँ कितने बहने भाइयों, हाँ अच्छा और भी कोई दुका, अच्छा आप दुका ठीक है, हमने वो लिया उससे सौदा करके 12 करोड़ में। तो बाबा ने इतने मेरे को वरदान दिए कि यज्ञ में आपका बहुत बड़ा पार्ट है। तो अभी तक कई बातें हैं 30 साल में, मैं बताऊंगा, एक दो टाइम नहीं है, यज्ञ का 400-500 करोड़ रुपया बचा है निमित्त। तो परसों जो बाबा ने वरदान दिया कि पढ़ाई में आप पास हो गए, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में पास होना है, वो तो बाबा के वरदान, हर एक वरदान हम कार्य में लगाते हैं। संगठन के द्वारा, संगठन के तरफ से बाबा ने मुबारक भी दी, परंतु हमको आगे बढ़ना है, इससे हम खुश नहीं होते कभी। बाबा ने ये दिया हम खुश हो गए, फिर हम खुश होने के कारण आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये है उमंग उत्साह बढ़ाने की विधि, हमको और प्रसाद करना है। मैं बोलता हूं सबसे अधिक प्रसाद मेरे को करना है आपसे, क्योंकि बाबा ने मेरे को जो वरदान दिया है हमको न सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, लेकिन प्रैक्टिकल में लाके ऐसा बनना है। तो कई आत्माएं हमको मिलती है लंदन में या कहां, वो बोलती हम आपके साथ जब बैठते हैं तो हमको बहुत शांति का अनुभव होता है, बहुत। मैं शांति में रहूंगा तो औरों को अनुभव होएगा ना, मैं नहीं रहूंगा तो कैसा औरों को अनुभव होएगा। बहुत, चाहे वीआईपी होए चाहे साधारण होए, कौन आत्माएं के कौन भिन्न भिन्न प्रकार की आत्मा बोलती है, हमको शांति का अनुभव होता है। कहीं को नहीं भी होता है तो उनको हो जाता है। तो एक मिसाल बताता हूं, एक टाइम लंदन में जब ये ग्लोबल हाउस बना तो गवर्नमेंट का ऑफिसर आया, हमने एप्लीकेशन डाली कितना बड़ा मकान की हम टैक्सी सब फ्री कर दे, क्योंकि हर साल में 1 करोड़ रुपया टैक्सेस होती है इतना बड़े मकान की। 10 का टाइम दिया, 10 बजे आया, बैठा हमारे साथ, क्रिश्चियन धर्म का था वो, खाली क्रिश्चियन धर्म को मानता है और कोई धर्म को नहीं मानता है। तो बोले आप ब्रह्मा कुमारी को हम नहीं जानते, पता नहीं ये कौन सा ये भारत से मठ पंथ आए, हम नहीं जानते इसको, तो इसकी हम टैक्सी फ्री नहीं करेंगे। मैं क्रिश्चियन धर्म का हूं, खाली चर्चेज जो होती है इंग्लैंड में यूके में उनको टैक्सेस फ्री होंगी, आपको नहीं हो सकती है। अच्छा, और फिर भी आपने अर्जी डाली है कायदे मुजिब, हमारे को हर एक रूम चेक करनी पड़ेगी, फिर रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं अपने बास को भेजूंगा, फिर देखें वो क्या बोलता है। तो मैंने कहा ठीक है, जो आपकी मर्जी। और फिर भी मैं नहीं समझता हूं आपको मिलेगी। आप ये एप्लीकेशन डाल रहे हो, क्या समझते हो मजाक है कि आपकी टैक्सेस फ्री हो जाए? ऐसे कोई आसानी की बात नहीं है। ऐसा तीखा भी तीखा बोल रहा था बीच बीच में। कहा ठीक है। ऐसा करके 10:30 बज गया। 10:30 बजे क्या होता है? हाँ, क्या होता है, क्या होता है? अच्छा, भाइयों को पता है। भाई ट्रैफिक कंट्रोल करते हो? ट्रैफिक कंट्रोल। अच्छा, 10:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल हुआ तो गवर्नमेंट ऑफिसर जो आया था क्रिश्चियन धर्म का, मैंने कहा अभी हमारा गीत चलता है, 2-3 मिनट हम शांति में बैठें, शांति का अनुभव करें। तो गवर्नमेंट ऑफिसर को अपमान होता है, उनको होता है देह अपमान, अहंकार होता है, अरे कि क्या बोल रहा है शांति शांति के बारे में। मैं बोला नहीं, मैं यहां काम करने आया हूं, मुझे शांति का अनुभव नहीं करना है। मैं आया हूं ऑफिशियल ड्यूटी पे, मेरे को काम करना है, शांति का अनुभव नहीं करना है। तो मैंने कहा आपको कोई एतराज है अगर मैं 2-3 मिनट शांति में बैठूं? बोला आपको बैठना, आप बैठो, मेरे को नहीं बैठना है, मेरे को काम करना है, मैं फाइल लेके आया, मेरे को काम करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया शांति में 2-3 मिनट। मैं चला गया शांति में, वो भाई फाइल खोल के गीत चल रहा है, अपने फाइल में नोट्स लिख रहा है, रिपोर्ट तैयार कर रहा है हमारे टैक्स के फ्री करने के लिए। मैं चला गया बाबा के पास। बाबा, ये गवर्नमेंट ऑफिसर जो क्रिश्चियन धर्म का है, आप तो सर्वधर्म के पिता हो, है कि नहीं? न सिर्फ भारत के परंतु विश्व के सर्वधर्म के पिता हो। यहां 1 करोड़ रुपया टैक्स है, आपने मेरे को वरदान दिया है कि यज्ञ के इकोनॉमी में आपका बहुत बड़ा पार्ट है, अभी इसको आप संभालो, संभालो। बुलाया ऊपर से, तो एकदम बाबा का साक्षात रूप में मेरे सामने खड़ा हो गया। सूक्ष्म वतन में बाबा जैसा है ना, वो बिल्कुल लाइट के रूप में मेरे सामने आके खड़ा हो गया, खाली बुलाया आके खड़ा हो गया, साक्षात्कार कराया, 10-20 सेकंड साक्षात्कार करके चला गया। तो क्या देखा मैंने, वो गवर्नमेंट का ऑफिसर अचानक फाइल बंद करके, मेरे सामने बैठा था, फाइल बंद करके टेबल पे रखा, शांति में चला गया। बिल्कुल उसका चेहरा सफेद होता है, लाल लाल चेहरा हो गया। तो गीत समाप्त हुए, वो बात ही नहीं करे बिल्कुल, पहले तीखा तीखा बात कर रहा था फास्ट, वो बात ही नहीं करे। 1 मिनट 2-3-4-5 मिनट 6 मिनट पास हुआ, वो बात ही नहीं करे बिल्कुल, बिल्कुल शांति में चला गया। तो मैंने अभी कुछ से बात तो करूंगा, रामी अभी इतना टाइम हो गया, गीत भी समाप्त हो गया, अभी कारोबार के बारे में कुछ बात करूं। तो 6-7 मिनट के बाद मैंने बोला अभी कुछ बात करें थोड़ा टैक्सेस के बारे में। तो बोला मैं अभी शांति का अनुभव कर रहा हूं। तो मैंने बोला शांति का ठीक अनुभव कर रहा है, थोड़ा टैक्सेस के बारे में बात करें, आपकी सब टैक्सेस फ्री हो गई। तो मैंने बोला आपको मकान देखना पड़ता है कायदे मुजिब, अब मकान जरा देखो, इतने कमरे है, ऑडिटोरियम बड़ा है, 700-800 बैठ सकते हैं, जैसा ज्ञान सरोवर में है, सेमिनार रूम है, फिर हमारे कोर्स रूम्स हैं, मीटिंग रूम्स है, बाबा का कमरा है, डाइनिंग रूम, किचन, सब आपको देखना पड़ता है, आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ता है, आप देखें। बोले नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसा ही सही कर लेता हूं। तो बाबा ने मेरे को टचिंग दी, इसको दिखाओ मकान, क्योंकि वापस जाएगा अपने ऑफिस में, ऑफिस में जाएगा तो उसका बॉस बोलेगा मकान देखा? बोला हम नहीं देखा, तो उसको फिर वापस भेजेगा। तो मैंने कहा चलो मकान देखेंगे, 10 मिनट लगेगा, फास्ट जाएंगे, जल्दी जल्दी में जाएंगे, जल्दी मकान देख के फिर आप चले जाओ भले। तो उसने माना, तो उसको पूरा मकान दिखाने के लिए मैं चला। बोला ये हमारा ऑडिटोरियम है, ये हमारा सेमिनार हॉल है, ये हमारी गैलरी है, ये हमारा डाइनिंग रूम है, ये बाबा कमरा, ये मीटिंग रूम, ये कोर्स रूम, हम जहां जहां मैं बोलूं पूरे मकान में, जिधर भी लेके जाऊं बोलूं ये है, ये है, ये है, वो कुछ देखे नहीं, देखता है लेकिन कुछ देखे नहीं, खाली बोले मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं। जहां भी लेके जाऊं, जो भी कमरे में लेके जाऊं, बोला ये है, ये है, बोले नहीं मैं अभी शांति का अनुभव कर रहा हूं। वो किचन में लेके गया, इतना मशीन चल रही है, कुकर चल रहा है, ग्राइंडर चल रहा है, आवाज आ रहा है। मैंने कहा ये हमारा किचन है, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं। तो उसके बाद मैं मकान के बाहर लेके गया, दरवाजे के ऊपर, मैंने कहा टैक्सीज माफ हो गई ना सब, मैं अभी शांति का अनुभव कर रहा हूं। दूसरे दिन फोन किया, आपकी सब टैक्सीज फ्री हो गई, मैं आपको लेटर भेजता हूं। लेटर भेजा, अभी 25 साल हो गया, 25 करोड़ बाबा का बच गया। तो कहने का भाव ये है, बाबा को साथ रखो हर कार्य में, आज की मुरली में भी यही था ना, बाबा को साथ ही रखो तो सफलता हर कार्य में गारंटी निश्चिंत हो जाएगी। तो हमने ऑफिस में क्या किया है, अभी लंदन में ग्लोबल हाउस में हमारी ऑफिस है, मैं बैठा हूं इधर, इधर टेबल है, यहां बाजू में सोफा है, और ये बाजू में एक चेयर रख लिया है, वो चेयर हमारी खाली है, वहां किसको भी नहीं बैठने देता हूं, वहां बाबा को बैठा लिया है। बाबा बैठा है सूक्ष्म में, बाबा तू मेरा साथी है, तू मेरा पार्टनर है, तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरा बॉस है, तू मेरा सब कुछ है, तो जो भी कार्य करता हूं उसको साथ करके, चाहे कोई बैठा होता है सामने मीटिंग में, चाहे कोई फोन पे बात करता हूं, बाबा तू मेरा साथी है। सफलता गारंटीड, वहां खाली बाबा बैठा है। ये प्रैक्टिकल में करने की बात है, कहने की बात नहीं है। तो बाबा को साथ रखता हूं। एक भाई आया, लंदन के बाहर रहता है, तो बोलता है कि हम कुछ खरीदारी कर रहे थे, तो बोला इसका 1 करोड़ रुपया लगेगा। मैंने कहा के मिलो ना, बोला के मिलूंगा, एक पैसा भी कम नहीं करूंगा, एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, आके मिलो तो सही। आके मिला, सामने बैठा है, बात किया उसके साथ। आजकल के मनुष्य में तनाव बहुत है, तो बाबा ने वरदान दिया और कैसा औरों को शांति का अनुभव कराओ, हल्का करो, उसको हल्का किया। 1 घंटा बैठा, बाबा साथ में बैठा है, हल्का किया, हल्का किया, इतना हल्का हो गया, जब उठा तो मैंने बोला अभी आपको उसका कितना पैसा दे, बोले जो आपकी मर्जी दे दो, जो आप। तो प्रैक्टिकल में जीवन में ज्ञान को मुरली मैं रोज 20 बार रिवाइज करता हूं। किसने क्या भी हो जाए, एक तो मुरली मिस नहीं करना है और बार बार रिवाइज करके उसको कैसे प्रैक्टिकल में जीवन में लाना है, धारणा करनी है, उसके ऊपर हमारा पुरुषार्थ चलता है, वो पुरुषार्थ है। तो पांडव भवन में ऊपर क्लास कराया कुछ समय पहले समर्पण भाई बहनों को, और बोले हमको टाइम नहीं मिलता है रिवाइज करने का। मैंने कहा विधि है, उनको विधि बताई। मैंने मैं भी बिजी हूं क्योंकि हमारे यज्ञ कारोबार भी हजारों करोड़ों का निमित्त मैं संभालता हूं यूके में, तो टाइम नहीं मिलता की बात नहीं है। कैसे हम विधि से योग में भी एक्यूरेट रहे और धारणा में भी एक्यूरेट रहे, मूल्य के आधार पे वो विधि बताई उनको। एक घंटा क्लास कराया जो समर्पण भाई बहने हैं, उसके बाद बोला आप कर सकते हो? बोला हाँ हम कर सकते हो, आज तो टाइम नहीं है आपको बताने का कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है। हर एक बात की विधि बाबा बताते हैं। मुरली में सब कुछ बाबा ने बताया, तो बाबा ने उस दिन बताया पढ़ाई के आधार पे, ज्ञान के आधार पे आपका योग भी रहेगा एक्यूरेट, धारणा भी एक्यूरेट होएगी और सेवा में भी सफलता को पाएंगे। तो ये आधार है पढ़ाई के ऊपर। बाबा ने कहा अटेंशन देना है पढ़ाई के ऊपर। मेरा ऐसा नहीं कि मैं खाली सेवा को अटेंशन देता हूं, नहीं, मेरा अटेंशन है पढ़ाई के ऊपर, तभी बाबा ने पास किया। पूरा अटेंशन पढ़ाई के ऊपर है, उसके आधार पे योग भी अच्छा रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, उसके आधार पे धारणा भी ठीक रहेगी और सेवा में भी सफलता को पाएंगे। करके देखना है। क्यों बताता हूं? क्योंकि प्रैक्टिकल में मैंने जीवन में वो किया है। कई मिसाल है मेरे पास, एक मिसाल नहीं है। आप अगर यहां 6 घंटा भी बैठेंगे ना, आपको नशा चढ़ जाएगा, उठेंगे नहीं, आपका भोजन रह जाएगा। तो ये एग्जाम्पल्स जो प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, उसका आधार, उसकी विधि क्या है, बाबा हमें बताता है, लेकिन उसको अपनाना हमारे हाथ में है। करना हमको है, बाबा नहीं करेगा, करना हमको है, बाबा की मदद, बाबा की शक्ति, सकाश, वो सदा के लिए बाबा दे रहा है, लेकिन लेने वाले की लेने में कमी है। संस्कारों का पर्दा लगा दिया है तो सूरज की रोशनी कैसे आएगी, वो भी छुप जाती है। सूरज तो बैठा है रोशनी देने के लिए, सकाश देने के लिए, शक्ति देने के लिए, लेकिन हमारे संस्कारों का पर्दा उसको छुपा दिया है। तो ये बहुत सहज बात है, बाबा ने आज भी बोला सहज है, बहुत राजयोगा भी सहज है, ज्ञान भी इतना साधारण। आप वेद शास्त्र पढ़ा, मैं पढ़ता था, मैं एक टाइम गया लंदन में ज्ञान के पहले हिंदू फिलॉसफी का पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज करने के लिए। मैंने कहा बाबा की खोज में देखो उसमें कुछ मिलता है हिंदू फिलॉसफी। तो जैसे किताब पढ़ने लगा मेरा तो चक्कर आ गया, मथे में चक्कर आ गया, ये तो ये क्या है, ये सब भूसा है मथा फिराने वाला। बाबा का ज्ञान कितना सरल है, कितना सहज है, हल्का कर देता है, उड़ा देता है। कभी भी मैंने जिंदगी में एक गोली, इतने विघ्न होने बावजूद भी, इतना कारोबार संभालने बावजूद भी, इतनी समस्या आने बावजूद भी, इतने बंधन बहाने बावजूद भी एक गोली सर दर्द की जिंदगी में नहीं लिया। थैंक्स किसका? बाबा का। कमाल किसकी है? बाबा की। बाबा ने मेरे को बोला एक टाइम, रतन भरी सभा में ऊपर एक कोई कारोबार में सफलता को पाया तो बाबा बोलता है स्टेज पे बैठ के, हुआ रतन आपने कमाल करके देखा है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, कमाल आप किया है, मेरे को निमित्त आगे रख दिया, मेरे को आगे रखा है, बस मैं हूं निमित्त। करण कर रहा है और बाबा है, हम खाली उसके श्रीमत पे चलें तो कमाल हो जाती है। श्रीमत पे चलें तो आज ये हम संकल्प करें, दृढ़ संकल्प, चलना है श्रीमत पे ऊपर, उड़ना है योग में। योग में भले उड़ो, योग में उठते चले जाओ, लेकिन श्रीमद पे चलना, क्योंकि श्रीमद आता है हमारे जीवन चरित्र कर्म क्षेत्र में। तो चलो कैसे, उड़ो कैसे, वो बाबा ने सिखाया है। करते रहो, करते रहो। प्रैक्टिकल में सार में ये है। फिर बाबा तो इतने अनुभव कराएंगे, इतने कराए मेरे को कि दुनिया के हिसाब से असंभव है, हो नहीं सकता है। किसको बोला सर? अरे हो नहीं सकता, कैसे हो सकता है, लेकिन हो गया। अब बाबा बोलता है ना, दो तीन लास्ट वीक बाबा ने मुरली में जो बोला, ये विघ्न है जो मच्छर जैसे, मच्छर बूम बूम करते हैं फिर दूसरे से मर जाते हैं ना। हाँ, अगले हफ्ते बाबा ने मुरली में कहा तो समस्या विघ्न आते हैं मच्छर जैसे, मच्छर जैसे आते हैं भूम 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 करके, दूसरे दिन देखो परवाने के पीछे मर गए। तो उसको समझो ये मच्छर है, भूम भूम करेंगे पर वो मर जाएंगे, लेकिन आपकी शक्ति कभी कम नहीं होए, आपकी हिम्मत कम नहीं होए, आपकी दृढ़ता कम नहीं होए, वो चले जाएंगे, आज है कल चले जाएंगे। तो आज से ये पक्का दृढ़ संकल्प करें, हिम्मत रखेंगे और बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा सबको पेपर पढ़ाई में पास का सर्टिफिकेट तो नहीं देगा, परंतु पास विद ऑनर्स का सर्टिफिकेट देगा। पास विधान हो जाए, ठीक है। अभी समाप्त करें, आपका भोजन का टाइम हुआ है? हाँ, टाइम क्या हुआ अभी? हाँ हाँ जी, टाइम क्या हुआ अभी? अच्छा, और सुनना चाहते हो? और सुनना चाहते हो? क्या सुनना चाहते हो? जी हाँ जी, कैसे कहा? अच्छा ठीक है, वो सुनाता। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, सार में बताता हूँ। हाँ तो क्या है कि रोज सुबह को सब मुरली सुनते हैं क्लास में, मैं भी जाता हूँ, कभी मुरली मिस नहीं करता हूँ, क्या भी हो जाए पूरी रात जाग, वो मैं बताया ना पूरी रात जागा, जब भी वो बताना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट सही हुआ, सस्ता सौदा हुआ, 5 बजे मैं सुबह को घर पहुंचा। लेकिन ये संकल्प नहीं आया कि देखो इतना अच्छा मकान मिला है और इतना अच्छा सौदा हुआ है, 40-50 करोड़ रुपए यज्ञ बाबा के बच्चे है, मैं अभी सो जाऊं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। 15 मिनट थोड़ा रेस्ट किया, फिर नहा के तैयार होके सीधा सेंटर में मुरली सुनने पहुंच गया 6:30 बजे। हल्कापन, भारीपन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हल्का, कोई थकावट नहीं, नींद नहीं। 6 बजे मैं सेंटर में पहुंच गया, मूली सुना, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि मैं जाके रेस्ट करूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी रात नहीं सोया हूं जाके रेस्ट करूं, नहीं। नाश्ता किया सेंटर में, ग्लोबल हाउस में, फिर मेरा कारोबार ऑफिस में, जिसको मिलना था, मीटिंग करनी थी, पोस्ट देखनी थी, फोन करना, सब करके दोपहर तक सब कारोबार संभाला, लेकिन थकावट इतनी भी नहीं, हल्कापन। दोपहर के बाद जाके थोड़ा रेस्ट किया। तो मूली रिवाइज करने का फायदा ये है कि आप थकावट नहीं होगी, हल्का फील करेंगे, बहुत हल्का। तो सुबह को मैंने मूली सुनी अटेंशन से, फिर से बाबा मूली में सुनाते हैं, एक तो सुनाते हैं अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान, वो तो हमको पता है, दूसरा सुनाते हैं योग के बारे में, वो भी पता है, सेवा के बारे में, वो भी निमित्त जो सेवा होएगी जो सेंटर में चलती है, वो निमित्त जो बहने भाई है वो बताएंगे, वो करनी है। चौथा है धारणा के ऊपर। तो धारणा की पॉइंट्स जिसमें हमारे को परिवर्तन करना है, उसको हमको बुद्धि में बैठाना है, चाहे वरदान हुआ, चाहे धारणा युक्त सार हुआ, चाहे स्लोगन हुआ, वो हमको बुद्धि में बैठाना है। तो जब भी क्लास के बाद गीत भी चलता है ना, तो वो टाइम मैं वो रिवाइज करता हूं। बुद्धि, ये बुद्धि में बैठाने की बात है, लिखने की बात नहीं है। तो मैं बुद्धि में इसको रिवाइज करता हूं। तो लंदन में उसके बाद मैं चला जाता हूं हर रोज सुबह को क्लास के बाद, बगीचा है, बहुत बड़ा बगीचा है वहां, वॉक के लिए। तो वॉक भी करता हूं आधा पौना घंटा, एक्सरसाइज भी हो गई, ब्रह्मा बाबा भी वॉक के लिए जाते थे, वहां वॉक भी करता हूं, और फिर मुरली भी बुद्धि में रिवाइज करता हूं। जो धारणा योग, जो वरदान स्लोगन, हमें बुद्धि में वो बैठाना है जो बाबा ने बताया। आप भी समझो, कहां भी हो, सेंटर से घर जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट में जाओ, और बात व्यर्थ बातों में क्यों समय गवाओ। किधर भी हो, कहां भी हो, तो चलते सेंटर से घर पहुंचते वो पॉइंट्स रिवाइज करो जिसमें आप धारणा युक्त भी होए, और जिसमें आप ये रियलाइज करो आप में कमी और कमजोरी है, हर एक में कमी कमजोरी है। तो बाबा हर एक पॉइंट बताते हैं मूली में। देखो ये जो आज बाबा ने बताए धारणा युक्त पॉइंट या वरदान, ये इसमें मन में कमी कमजोरी है, मैं वो जीवन में स्वरूप में लाया हूं कि नहीं, ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप बना हूं कि नहीं, तो वो मैं करता हूं। तुरवाइज हो जाती है। फिर उसके बाद माताएं चाहे नाश्ता बनाती है या भाई लोग नाश्ता खाते हैं, तो क्यों बातें व्यर्थ बातें करें, व्यर्थ बातें करने का कारण नहीं है, नहीं दरकार है, व्यर्थ बातें में समय नहीं देना है, न व्यर्थ सोचने भी समय हम नहीं दें। वो पॉइंट रिवाइज करके बुद्धि में जो बैठाई, देखें हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल में चल रहे हैं, चलेंगे, वो प्रण वायदा करें हम चलेंगे उसके ऊपर दिन में, फिर रिवाइज हो गई मूली पर। भूल भी गया तो नोटबुक में लिखी है, नहीं तो मोबाइल पे कहां मूली है ऊपर के फिर देखो, अगर भूल भी गया तो रिवाइज हो गई। फिर ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाते या कौन सा भी ट्रांसपोर्ट लिया, तो हम बेकार बातें क्यों याद करें, व्यर्थ बातें क्यों याद करें, हमारा टाइम जाता है व्यर्थ बातों में, बहुत सोचने में और बोलने में, क्यों दरकार है, उसमें नुकसान है। व्यर्थ बातें सोचने में, बोलने में और किसका नुकसान होए कि नहीं, हमारा नुकसान अवश्य है। हम क्यों सोचें व्यर्थ बातें? उसके बदले हम अगर मूल्य की पान सोचेंगे तो उसमें हम हमारा परिवर्तन भी होएगा और शक्ति भी मिलेगी। तो चाहे भाई या बहनें ऑफिस में जाती है, माताएं बच्चों को स्कूल लेके जाती है, या माताएं कुछ भोजन बनाती है, या कुछ खरीदारी करनी होती है, चलो खरीदारी करो, लेकिन बुद्धि में तो मूल्य को बैठाओ, रिवाइज करो और ये संकल्प रखो हम प्रैक्टिकल में और हमको उनको लाना है जीवन में। बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना है, आज क्रोध नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, किसके ऊपर क्रोध नहीं करना है। बाबा ने बोला दही अपमानी, देखो कितनी परसेंटेज आप दही अपमानी है, कितनी परसेंटेज बढ़ाई है, आत्म अपमानी कितने बने, उसके ऊपर संकल्प लगाओ। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातों में संकल्प नहीं लगाना है। 10% 20% 30% उसको बढ़ाने, उसको अभ्यास को बढ़ाओ ना। दही अपमानी बनो, पवित्र संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करना है बाबा ने, शुभ संकल्प करना है। बाबा ने कहा कोई भी गलत भी होए ना, आपको पता है वो गलत है, वो रांग है, फिर भी संकल्प हमारे शुद्ध होए, वो आत्मा व्यक्ति प्रत, क्योंकि हमारे शुभ संकल्प से हमारे को फायदा है, लेकिन वाइब्रेशन जो मिलेगी और आत्मा को, उसका भी परिवर्तन संभव है। वो अभी नहीं है तो आगे भी हो सकता है। तो ये मूल्य की पांच जो बाबा हर रोज बताते हैं, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाने के ऊपर अटेंशन रहे पूरा दिन। आप ऑफिस गए, फिर ऑफिस में एम रखो घंटे में एक मिनट शांति में ट्रैफिक कंट्रोल का। आप भले ऑफिस में काम करो, माताएं जो है घर में भोजन बनाती है, वो भी एक घंटे में एक मिनट शांति में रहे, बाबा को याद करे, मूली रिवाइज करे। भोजन का टाइम आया, वो टाइम भी बाबा की याद में दोपहर का भोजन करो। लंच ब्रेक मिलती है, हम गपशप करते हैं, टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम में भी मूल्य की पॉइंट्स को प्रैक्टिकल में जीवन में लाने का पुरुषार्थ करो। फिर शाम को घर आए काम से, माताएं भी अगर बच्चों को स्कूल से लेके आई या भोजन बनाया, कोई शॉपिंग किया है, सब्जी लिया, वो तो सब हाथ पांव का काम है। बुद्धि में व्यर्थ बातें क्यों क्यों बैठाएं, उसको निकालो, ये बैठाओ। मैं तो ऑफिस में भी मूल्य रख के बैठा हूं मशीन के ऊपर, एक मीटिंग होती है जब तक दूसरा आए तो मूल्यांकन कर लेता हूं, रिवाइज हो जाती है। आपका नोटबुक है, जब तक दूसरा आए तब तक रिवाइज, मैं प्रैक्टिकल में करता हूं। फिर शाम को चाय के टाइम में या डिनर के टाइम में, मैं भी रोज शाम को योग करता हूं लंदन में, 7-8 के बीच में कम से कम आधा घंटा, हमारी मीटिंग्स भी होती है कहीं यज्ञ के कारोबार में, आधा घंटा योग हमेशा करते हैं। उसमें भी योग के साथ आज के दिन जो बाबा ने कहा मुरली में, धारणा स्वरूप चाहे वरदान चाहे स्लोगन, उसके ऊपर हम कितना चलें वो ध्यान में रखो। प्रैक्टिकल जीवन में लाया, स्मृति में लाया, ये करो। उसके आगे फिर भोजन के टाइम में भी रात को बाबा की याद तो होए, लेकिन याद का आधार भी श्रीमद है, ज्ञान है। पहला सब्जेक्ट ज्ञान है कि याद है? ज्ञान, ज्ञान के आधार पे याद अच्छी टिकेगी। कई लोग कई बोलते हैं हमको बाबा की याद नहीं टिकती है, अमृत वाला हमारा अच्छा नहीं होता, लेकिन ज्ञान अगर बुद्धि में ठीक नहीं है तो याद भी ठीक नहीं बैठेगी। आधार ही ज्ञान है ना, ज्ञान के आधार पे योग अच्छा होएगा। फिर भोजन के बाद भी सोने के टाइम 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम मिले पूरा दिनचर्या चेक करना, पूरा दिनचर्या चेक करो। आज के दिन श्रीमद के मर्यादा अनुसार आज के मूली प्रमाण हम कितना चले और कितना फेल हुए तो बाबा से माफी मांगो, बाबा ये भूल हो गई, हम ये अभी आगे भूल नहीं करेंगे और फेल नहीं होएंगे। सोने के टाइम में फिर ये करना है, सुबह को भी जब उठो अमृत वाले में, फिर भी वो जो पॉइंट्स है, जो मूली की पॉइंट्स जो सुनी उसके आधार पे, श्रीमद के आधार पे योग अच्छा रहेगा। अगर श्रीमद नहीं होगी तो व्यर्थ मत होएगी, व्यर्थ संकल्प होएंगे। अगर श्रीमद को रखेंगे आधार तो फिर योग अच्छा रहेगा। कहीं बोलते हैं हमारा योग अच्छा नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है? क्योंकि पूरे दिन हम झरमुई झंगमुई कप शप में टाइम गंवाते हैं, तो नुकसान हमारा ही होता है। एक भाई था, एक कार थी, मैं बताता हूं, अफ्रीका में एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी, उसमें चार भाई बैठे। जब ये बैठे कार में तो बाबा को याद किया, और दूसरे शहर में भी सेवा के लिए जा रहे थे। तो जब ये हाईवे में गए, अंधेरा था, तो अंधेरे में हाईवे में ड्राइव कर रहे थे तो चार डाकू झाड़ के पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने हाईवे के ऊपर किले रख दिए, तो जैसे कार वो किले के ऊपर आई, नेल्स वगैरह, तो टायर्स पंक्चर हो गए। तो ड्राइवर और पैसेंजर बाहर निकले टायर चेंज करने के लिए, देखने के लिए, तो डाकू आए, उनकी मार पीट करके उनका पैसा सब लेके गए, मोबाइल सब लेके गए। तो अभी क्या करें, बेचारों ने बहुत पैदल वॉक करके कहां से फोन ढूंढा, हाईवे में कुछ डिस्टेंस फोन होते हैं, पब्लिक फोन से फोन किया कि ये हाल हुआ है, वो दूसरी कार भेजो। दूसरी कार आई, फिर उनको लेके गई। तो वैन जो ट्रांस में जाती है, उसने बाबा से पूछा, बाबा देखो ये भाई जब भी कार में बैठे तो बाबा को याद किया, और आ रहे थे हमारे शहर में, दूसरे शहर में सेवा के लिए, तो उनको ये कैसा हुआ, ये समस्या प्रॉब्लम कैसी आई? तो बाबा ने बोला, ये ठीक बात है, उन्होंने बाबा को याद किया, कार में बैठे सेवा के लिए आ रहे थे, लेकिन जब कार में बैठे तो बाबा को भूल गए और गपशप लगाने लगे, झरमुई झंगमुई, बाबा बोलते हैं ना, हाँ बस खत्म कर देते हैं लास्ट मोमेंट में। तो फिर अगर वो कार में बैठ के बाबा की याद में बैठे होते थे तो ये कभी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। बाबा की याद छत्र छाया है। तो आप कहां भी हो, किधर भी हो, कार में या कहां भी हो, आप बाबा की याद में हो तो वो छत्र छाया बनके आपको छत्र छाया के अंदर सेफ रखेगी। तो ये प्रैक्टिकल में बाबा ने कहा, अगर वो याद में बैठे होते थे कार में या ज्ञान के बातें में याद करते थे तो ये नहीं होता था। तो सिंपल है। तो 20 बार हो गया ना मैंने बताया, आप गिनती करना। ओके अच्छा, तो अभी आपका जो सवाल था उसका जवाब दे दिया, समय हो गया, तो समय प्रमाण हम समाप्त करते हैं, ठीक है? ओके, फिर मिलेंगे, ओम शांति। सब नहीं बोलते, थोड़े बोलते। सब कट्टे बोले, हाँ, थैंक यू। एक टाइम और जोर से, थैंक यू।
पालना का बाबा, तेरी पालना।